नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी भाषा के एक अग्रणी अखबार में सोमवार को प्रकाशित एक लेख में कहा कि भारत और जापान मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देंगे, जहां सुरक्षित समुद्र हो, व्यापार तथा निवेश की अनुकूलताएं हो, जहां संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता हो। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर क्वाड नेताओं की शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योमियूरी शिम्बुन अखबार में भारत और जापान के बीच जीवंत संबंधों पर एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री के लेख का शीर्षक भारत जापान शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक साझेदारी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सामरिक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित दो लोकतंत्र होने के नाते हम स्थिर एवं सुरक्षित क्षेत्र के अहम स्तंभ हो सकते हैं। इसीलिए हमारी साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों तक बढ़ रही है। हमारे रक्षा संबंध अभ्यासों तथा सूचना के आदान प्रदान से रक्षा विनिर्माण तक तेजी से बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं और सोमवार सुबह उन्होंने लखनऊ विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। आजम के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। रामपुर से लखनऊ रवाना होने के दौरान आजम ने कहा कि इंस्पेक्टर ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी दी है। रिहा होने के बाद आजम खान ने यूपी तक से बात करते हुए कहा, लंबी थी गम की रात, मगर रात ही तो थी, सवेरा तो होना था। जेल के माहौल में हमें बाहर की खबरें नहीं मिल पाती थी। जेल प्रशासन ने हम पर इतनी पाबंदियां लगाई थीं। जिन्हें जेल प्रशासन मिलने के लिए भेजता था, हम उनसे मिल लेते थे। जिसने साथ दिया, उनका शुक्रिया। मेरे अपनों की कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से नाराजगी के सवाल पर आजम खान ने कहा, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्यों होगी? मेरा उन्होंने क्या बिगाड़ा है? मैं स्पा में एक अदना सा कार्यकर्ता की हैसियत का आदमी हूं। बड़े लोगों की बातों में दखल देने की मेरी औकात नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकलों पर आजम खान ने कहा कि मैं हार्दिक पटेल तो हूं नहीं। देश की राजधानी में सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हुई, जिससे दिल्ली NCR के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बारिश आज पूरे दिन रुक रुक कर जारी रह सकती है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। सोमवार सुबह तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस था, जो बारिश के बाद सुबह 7 बजे 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग की ओर जारी किए गए ताज़ा बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटे में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएँ चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर यात्रा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, घरों के खिड़की और दरवाजे बंद रखें और जरूरी ना हो तो फिलहाल यात्रा को टाल दें। इसके साथ ही कहा कि बारिश और तूफान के कारण कमजोर संरचनाओं जैसे झोपड़ी और टीन शेड आदि को नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 33 साल पुराने रोड रेज मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने जेल की दाल रोटी खाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद आज पंजाब पुलिस उन्हें पटियाला जांच के लिए राजेंद्र अस्पताल लेकर पहुंची थी। श्रीलंकाई पुलिस ने देश में सरकार विरोधी और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के संबंध में अब तक कम से कम 1500 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को ये जानकारी दी गई। इन झड़पों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 200 से अन्य लोग घायल हो गए। देश के सबसे बड़े आर्थिक संकट के कारण पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपदस्थ किए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर राजपक्षे के समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद 9 मई को हिंसा भड़क गई थी। ऑनलाइन पोर्टल newsfirst.ik के अनुसार श्रीलंकाई पुलिस के प्रवक्ता SSP निहाल थलदुवा ने बताया कि इस हिंसा के संबंध में 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 152 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य हस्तक्षेप करेगा। ये पिछले कुछ दशकों में ताइवान के समर्थन में दिए गए प्रत्यक्ष एवं जोरदार बयानों में से एक है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का चीन का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। एक चीन नीति के तहत अमेरिका बीजिंग को चीन सरकार के रूप में मान्यता देता है और उसके ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। बहरहाल उसका ताइवान से अनौपचारिक संपर्क है। अमेरिकी द्वीप की रक्षा के लिए सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी करता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।